तो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 15वें अध्याय से चर्चा करेंगे, जिसमें श्लोक संख्या 9 से 15 पे हम चर्चा करेंगे। और उसमें भी जो उच्चारण हम करेंगे, 11वां श्लोक उच्चारण करेंगे, 11th वर्स जो है उसका उच्चारण करेंगे। और उससे पहले हम आप सबसे आशीर्वाद की याचना करेंगे कि श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर निताय गौर सुंदर की प्रसन्नता के लिए, आप सबके आनंद के लिए और अपने हृदय की शुद्धि के लिए ही केवल सेवा के भाव से कृष्ण कथा को कर सकूं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वशास्त्राभिपेयुष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षय अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत्संगी मद्गुरु मन्महाधनम मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायन अतीन चोचता करा हानामंच कदाचिन मां प्रेम्ना हृत्कंठयस्व धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्य वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरिश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेऽत्र कृतभिषु शुशुभिस्ततक्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृद्रव्यसंयुतं पीवत भागवत रसमाल्यं मुहुरौ रसिकभुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो श्रीमद् भागवतम भक्तों का प्राण है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरे बंधु, मेरे गुरु, मेरे संगी, मेरा भाग्य और मेरा आनंद सर्वस्व श्रीमद् भागवतम है। भागवतम भक्तों को हर प्रकार से सहायता करती है। भागवतम स्वयं भगवान से अभिन्न होने के कारण, रसिक शेखर रसराज कृष्ण होने के कारण, जो उन्नत कोटि के भक्त हैं वो भागवतम के संग में रसास्वादन करते हैं अथवा भागवतम को भी रसास्वाद कराते हैं भागवतम में डूब करके। और जो अभी भक्त बनने जा रहे हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम औषधि भी है, क्योंकि इस संसार की बीमारी हमें लगी हुई है, अविद्या की बीमारी हमें लगी हुई है, तो ये हमारी औषधि भी है। और औषधि होने के नाते किस समय किस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि हम अविद्या के स्थान पर रह रहे हैं। अविद्या के स्थान पर रहते हुए अविद्या में किस प्रकार से कार्य करें कि परम विद्या मतलब भगवान के चरणों की प्राप्ति हम कर सकें। और उसके लिए श्रीमद् भागवतम में भगवान के उन्नत कोटि भक्तों का, उन्नत कोटि के भक्तों का ही उदाहरण दिया गया है और बहुत एक्सट्रीम केसेस के इसके अंदर प्रेजेंट किए हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही जो मुश्किल वाले केस होंगे, जो किसी के लिए संभव ना हो, वो केस यहां पर ला करके रखे गए हैं। और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक भक्त के जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उसको क्या करना चाहिए, जिससे कि उसकी रति मति श्री कृष्ण में और बढ़ती चली जाए। तो आज के प्रसंग में हम महाराज चित्रकेतु के विषय में सुन रहे हैं, जैसा हम पिछले कुछ समय से सुनते आ रहे हैं कि महाराज चित्रकेतु बहुत धनी थे, अच्छा उनका साम्राज्य था, प्रजा भी प्रसन्न थी, परंतु उनका हृदय व्यथित था क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का दुख तो बहुत था और किसको कहें जाकर के, पर धीरे धीरे सारी प्रजा इस बात को खुद ही समझने लग गई थी कि राजा हमारे दुखी रहते हैं। एक तरफ से वो उन्नत कोटि के वैष्णव भी हैं, संत भी हैं वो, परंतु इस संसार की आसक्ति वो किसी को भी फंसा सकती है। और खैर, चित्रकेतु महाराज हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो किस प्रकार से व्यक्ति संसार में फंस सकता है, सब कुछ होते हुए भी एक चीज के लिए फंसे। जब उनको यह बात पता लगी कि उनके भाग्य में नहीं है पुत्र रत्न, तो भी स्वीकार नहीं कर पाए। अंगिरा मुनि की कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयं अंगिरा मुनि अपने एक विस्तार के रूप में उनके घर में जन्म ले लिए उनको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये भक्तों का स्वभाव है कि वो अगर किसी पे कृपा करने के लिए उतरते हैं तो जब तक वो भक्त बन ना जाए तब तक उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। जैसे कई बार हमने देखा, एक भक्त को वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता था तो लोग उससे इसलिए बुक नहीं लेते थे कि वो कन्विंस हो गए कि बुक लेनी है, वो व्यक्ति को हिलने ही नहीं देता था अपनी जगह से। तो फाइनली व्यक्ति को इसलिए बुक लेनी पड़ती थी उससे, पुस्तक, कि अगर मैंने पुस्तक नहीं ली तो मैं आगे और कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो भक्त जब तक किसी को, सामने वाले को कन्विंस ना कर दे, छोड़ते नहीं है, तो इनका स्वभाव है। पुत्र हो गया और अब पुत्र की मृत्यु भी हो गई कि रानियों ने जहर दे दिया और ईर्ष्या के कारण उसकी मृत्यु हो गई और राजा शोकमग्न हो गए। शोकमग्न होने पर वहां पर अंगिरा मुनि और नारद जी प्रकट हुए उनको शिक्षा देने के लिए। तो हम आगे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या पहले 9 से हम अनुवाद पढ़ेंगे, 9, 10 से और 11 हम एक साथ उच्चारण करेंगे। तो अब श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं आश्वासितो राजा चित्रकेतु द्विजोक्ति भी विमृज्य पाणिना वक्त्रम् अधिम्लानम् भाषत। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगे, श्री राजौ वाचा को युवाम ज्ञान संपन्नो महिष्टो च महीयसाम अवधूतेन वेशेण गुडावीह समागतो। महाराज चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूं कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अतः समस्त महापुरुषों में से भी आप ज्यादा महान हैं। चरन्ति हि यावनो कामम् ब्राह्मणा भगवत प्रियाः मातृशाम ग्राम्य बुद्धिनाम बोधायोन्मतलिंगिना शब्दार्थ चरंती विचरण करते हैं ही निसंदेह अवनो पृथ्वी पर कामम इच्छा अनुसार ब्राह्मणाः ब्राह्मण भगवत प्रियाः श्री भगवान के अत्यंत प्रिय वैष्णव भी मादृशाम मुझ जैसे ग्राम्य बुद्धिनाम क्षणिक भौतिक चेतना से ग्रस्त बोधाय उपदेश करने के लिए उन्मत्त लिंगिनः प्रमत्त का सा वेश बनाए हुए अनुवाद बोलेंगे मेरे पीछे श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं कभी कभी अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं और हम जैसे भौतिकवादियों को जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं लाभ पहुंचाने एवं उनकी अविद्या दूर करने के लिए इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं तभी हम आगे का पढ़ेंगे कुमारो नारद त्रिभंगु अंगिरा देवलोसितः आपांतरात्मा व्यासो मार्कण्ड्योऽथ गौतमः वसिष्ठो भगवन्नामः कपिलो बादरायणिः दुर्वासा यज्ञवल्क्यश्च जातु कर्णस्थारुणी रोमशश्चवनो दत्ता आसुरिः स पतञ्जलिः ऋषिर्वेद दशिरा तुम्यो मुनि पंच शिखस्तथा हिरण्यनाभा कौशल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः एते परे च सिद्धेश्च चरन्ति ज्ञानहेतवा हे महात्माओं मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को ज्ञान उपदेश देने के लिए भूमंडल पर भर में जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं उनमें सनत कुमार नारद ऋषभ अंगिरा देवल असित अपंतरात्मा अथवा व्यासदेव मार्कंड्य गौतम वशिष्ठ भगवान परशुराम कपिल शुकदेव दुर्वासा याज्ञवल्क जातुकर्ण तथा अरुणी हैं अन्यों के नाम इस प्रकार हैं रोमश श्यवन दत्तात्रेय आसुरी पातंजलि वेदों के प्रधान परम साधु धौम्य पंचशिख हिरण्यनाथ कौशल्य श्रुतदेव तथा ऋतुध्वज आप अवश्य ही इनमें से हैं कौन बोल रहा है ये बात महाराज चित्रकेतु तात्पर्य सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे ज्ञान हेतु शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि इन श्लोकों में जिन महापुरुषों की सूची दी गई है वे भूमंडल पर जनता को पथ भ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं वरन वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन वृथा है मनुष्य जीवन का अभिप्राय श्री कृष्ण या ईश्वर के साथ अपने संबंध को जान लेना है जिसमें इस ज्ञान का अभाव होता है वह पशु तुल्य है श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया परहत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः मनुष्यों में अधम और निम्नतम मूढ़ जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव धारण किए हुए हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं लेते अविद्या है जीवन की देहात्म बुद्धि यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के अथवा स्वैव घोकरा। सामान्य इस सामान्यता इस ब्रह्मांड में और विशेष रूप से इस भूलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह तथा आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है, अतः आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। इसलिए यहां जिन ब्राह्मणों की सूची दी गई है वे भक्त होने के कारण विश्व भर का विचरण करके ऐसे मूल भौतिकवादियों के हृदय में भगवान में कृष्ण भावना जगाते हैं। इन श्लोकों में जिन आचार्यों के नाम गिनाए गए हैं उनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। पंच शिख शब्द भी महत्वपूर्ण है, जो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तथा आनंदमय बुद्धि से मुक्त हैं और आत्मा के सूक्ष्म कोशों से परिचित हैं, वह पंच शिख कहलाता है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 218 के 219वें श्लोक में कहा गया है कि के अनुसार पंचशिख नामक आचार्य ने मिथिला के राजा महाराज जनक के कुल में जन्म लिया था। सांख्य दर्शनाशास्त्री पंचशिखाचार्य को अपने में से एक आचार्य मानते हैं। वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। दुर्भाग्यवश जीवात्मा अविद्यावश अपने को शरीर मान लेता है, जिससे उसे हर्ष तथा कष्ट का अनुभव होता है। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि महाराज चित्रकेतु का भी बहुत बड़ा प्रवचन नहीं दिया इन्होंने आकर के, छोटा सा ही प्रवचन दिया और छोटे से प्रवचन में ही इतने बड़े शोक से उनको सांत्वना प्राप्त हो गई। साधारणतः ये होता नहीं है, किसी का बच्चा मर जाए उसको जाकर के आप दो चार श्लोक सुनाओ तो वो सांत्वना मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। और हम तो देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी अगर हम सांत्वना देने का प्रयास करते हैं कि नहीं भैया देखो शास्त्रों में लिखा है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त बहुत क्रोधित हो गया था तो हमने उसको बोला कि देखो भगवत गीता में भगवान लिखा है क्रोधेशा कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, तो क्रोध मत हो। तो मुझे मारने को दौड़ा वो और गुस्सा हो गया। तो हमारी बात से इतना भारी प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम लोग अगर किसी को बोले मांस भक्षण करना छोड़ दो तो वो एक बार में समझ जाता है हमारी बात को। आप कभी किसी कसाई की दुकान पर जाओ और बोलो ये कसाई भाई ये तुम क्या करते हो, नरक में जाओगे, ये कसाई की दुकान बंद कर दो, तो क्या वो उसी समय शटर बंद करके बाहर आ जाएगा? हाँ नहीं सुनेगा कोई हमारी बात। और यहां हम क्या देख रहे हैं, नारद मुनि ने थोड़ा सा प्रवचन दिया, अंगिरा मुनि नारद मुनि ने बदल गए एकदम, सांत्वना, पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, शांत हो गया चित्त। और आप देखिए बहेलिया जो कि जानवरों को आधा आधा मार करके उसको आनंद आ रहा था, तड़पता हुआ जानवरों को देखने में, रोज का उसका काम था, ऐसा नहीं कि काट दिया जानवर खा रहा है सीधे, आधा काट के तड़पता हुआ देख करके उसको आनंद आता था। सुना है ना कथा आपने सबने मृगारी। और नारद मुनि वहां पर जब गए तो क्या प्रभाव पड़ा, नारद मुनि को कोई बहुत लंबा प्रवचन देना पड़ा? नारद मुनि ने दो चार बातें बोली, भाई देखो तुमने अगर मारना है तो उसको पूरा मार दो, ये भी मत बोले मत मारो, क्या बोला पूरा मार दो। तो वो बोले क्यों पूरा क्यों मार दो, कह रहे देखो वैसे ही तुम मारने के कारण वैसे ही तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा नरक में जाकर के, और आधा आधा मार करके इतना तड़पाओगे तो तुम्हें और कष्ट भोगना पड़ेगा। डर गया वो, हम डरते हैं अगर हमारे को किसी ने बोला तुम नरक जाओगे हम डरते हैं कभी? और हम किसी को बोले तुम नरक जाओगे वो कहेगा पहले तुम्हें भेज दूंगा, कोई नहीं डरता हमसे हमारी बातों से, ना हम किसी की बात से आसानी से प्रभावित होते हैं ना हमारी बात से कोई प्रभावित होता है। क्या कारण है, या नारद मुनि बोल रहे हैं फट 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 फट, जहां जिसको प्रवचन देते हैं फटाफट समझ जाता है, जिसको उल्टा समझाना चाहते हैं उल्टा भी समझ जाता है। कंस को उल्टा समझाया था जाके कि कमल की पंखड़ी है, बताओ कौन सी पहली और कौन सी आठवीं, वो समझ गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए जो हमारा धर्म है प्रचार करना, हमारा जो इस्कॉन का आंदोलन है प्रचार का आंदोलन है। अब प्रचार हम लोग ब्रॉडकास्ट तो कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं प्रवचन दे करके, पर किसी के चित्त को प्रभावित करना, किसी की चेतना के ऊपर प्रभाव डालना, वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारी चेतना उतनी शुद्ध ना हो चुकी हो। नारद मुनि पूर्ण शुद्ध है इसलिए वो जो बोलते हैं तुरंत व्यक्ति प्रभावित होता है। हम सबका भी अनुभव रहा है कि हमारा जो मित्र है, भक्त है, मित्र है, उसने हमारे को कोई एक स्टेटमेंट भागवतम की बताई कि हमें अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए, आधे घंटे बाद वो बात आई गई हो जाती है। वही बात हम अपने गुरु के मुख से सुनते हैं तो दिन में 10 बार बोलते हैं हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था। होता ऐसा कि नहीं होता? क्योंकि जिसकी चेतना जितनी शुद्ध है उसकी बात उतनी ज्यादा प्रभावित करेगी। इसलिए नारद मुनि जिसको बोल रहे हैं वो प्रभावित हो रहा है। तो प्रभुपाद जी वहां बोल रहे हैं कि इसलिए आवश्यक है कि हमारे आंदोलन में जो भक्त लोग हैं, विशेष रूप से जो प्रचार कर रहे हैं, और हम सब प्रचार करते हैं किसी न किसी स्तर पे, हम देखते हैं किसी न किसी स्तर पे हम सब प्रचार करते हैं कि नहीं करते, कोई एक व्यक्ति को तो हम प्रचार करने का प्रयास करते ही हैं, किसी न किसी प्रकार से हरि कथा करके हम किसी न किसी को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। हम यहां वृंदावन में जहां रह रहे हैं वहीं पर एक और भक्त रहते हैं, तो आते जाते अगर उनसे कोई चर्चा करे तो वो कुछ ना कुछ हरि कथा और हरि प्रचार की बात कर ही देते हैं, भले ही वो बाहर प्रवचन देने नहीं जा रहे। तो हम सब प्रभुपाद जी के आंदोलन में किसी न किसी स्तर पर प्रचार कर ही रहे हैं किसी न किसी सेवा के माध्यम से। पर हमारी प्रचार और हमारी सेवा में प्रभाव कब आएगा? जब हृदय शुद्ध रहेगा। हृदय शुद्ध रखने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि साधना और शुद्ध चरित्र। शुद्ध चरित्र में विशेष रूप से प्रभुपाद जी वहां वर्णन करते हैं नॉन डुप्लीसिटस, मतलब ऐसा नहीं कि वो जो बोलते हैं ना क्या नाम है, मुख में राम नाम बगल में छुरी, कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। भक्त का तो अंदर बाहर एक जैसा हो जाता है, जितना भक्त सरल होता है वो उतना शुद्ध होता है और उसकी बात में उतना दम होता है। तो जब हम भक्तों के बीच में भी झूठ इत्यादि बोलने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है अपनी छोटी छोटी कमियों को बचाने के लिए और चीटिंग करने का प्रयास करता है, धन के मामले में, सेवा के मामले में, प्रचार में, कहीं पर भी हम छोटी छोटी चीजों में जब अपने चरित्र को दूषित कर लेते हैं तो हमारी जो वाणी में शक्ति है वो चली जाती है। जब इस वाणी से हम निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुष्कार्य करते हैं, तो ये वाणी की जो शक्ति है दूसरों को प्रभावित करने की वो नष्ट हो जाती है। तो जब भक्त का चरित्र शुद्ध रहेगा नारद मुनि का अनुगमन करते हुए, तो उसकी बात में शक्ति आ जाएगी। वही श्रील प्रभुपाद जी व्यक्ति को एक बार बोलते थे कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, भगवान की सेवा में आओ। वो हाथ अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चला आता था, चलो जी भगवान की सेवा में जाना है। हम पूरा पूरा जीवन किसी को समझाते रह जाए, वो नहीं समझ पाता व्यक्ति। तो शक्ति कहां से आएगी? शुद्ध चरित्र, शुद्ध साधना, दृढ़ साधना, शुद्ध चरित्र, ये हमारे को शक्ति प्रदान करेगा, हमारी वाणी में प्रभाव करेगा, प्रदान करेगा, हमारी देह में प्रभाव होगा कि जिससे हम मिलेंगे उसको प्रभावित कर पाएंगे। इसीलिए शिला जीव गोस्वामी एक स्थान पर वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त वास्तव में प्रचार कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो किसी से बात करने लगते हैं तो उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा उसको कन्विंस करते हैं कि इसकी बात सुनो, ये अच्छा व्यक्ति है। हम जयानंद प्रभु के बारे में सुनते हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, कि वो नशा करने वाले लोग, दारू पीने वाले लोग भी उनके मित्र बन चुके थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो पूछते थे वेयर इज माय फ्रेंड जयानंद। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत सरो पूजितो। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, केवल सर्वे हित, सबके हित में ही लगे हुए हैं। ऐसा शुद्ध चरित्र वाला साधु जब बोलना शुरू करता है तो निश्चित रूप से सामने वाले के हृदय पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं? तो फिर क्या हम प्रचार नहीं करते? नहीं, हम प्रचार नहीं करते, हम क्या करते हैं? साधना करते हैं। ये प्रचार भी क्या है? क्योंकि हमारे को आज्ञा मिली है, उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हमारी साधना है ये भी अपने शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि प्रचार तो शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। और हाँ, जब हम इस आज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हुए शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम भी प्रचार शुरू कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी चाहते हैं हम उस स्तर पे आए, तो उसके लिए हम सब एक साथ प्रयास करें। और हम भी आशीर्वाद चाहते हैं भक्तों से कि हम प्रचार कर पाए। और अब यहां देखिए, अब जब ये भक्त जिनके हृदय शुद्ध हो चुके हैं वो क्या करते हैं, उनके हृदय में इतनी करुणा भर चुकी होती है। अब उनके पास दो ही चीजें होती हैं, एक तो वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और ये बद्ध जीवों के दुख को ना सह करके इनको संसार के बंधन से निकाल लेना चाहते हैं। तभी 11वें श्लोक में महाराज चित्रकेतु क्या कह रहे हैं, चरन्ति यवनो कामं ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादशाम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधायुन्मत्त लिंगना। कि आप जैसे जो भक्त हैं, ये जो भक्त हैं भगवान के शुद्ध भक्त जिनका वर्णन आगे मैं कर रहा हूं, और ऐसे कई सारे भक्त जिनका हृदय शुद्ध है, वो क्या करते हैं? मैंने सुना है वो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। किनके लिए? क्योंकि वो तो भगवान के प्रिय हैं और पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं मुझे जैसे ग्राम्य बुद्धि वाले लोगों को। ग्राम्य बुद्धि समझते हैं? संसार में आसक्त बुद्धि, संसार में आसक्त, ग्रह परिवार बच्चे, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मैं महान, मेरा भारत महान, ये सब चीजों में फंसे हुए जो लोग हैं वो सब आसक्त हैं शरीर में। आज मेरा भारत महान, कल जन्म होगा अमेरिका में तो कल मेरा अमेरिका महान होगा। सब ये क्या है? देहात्म चेतना में फंसे हुए लोग हैं, घर परिवार सब में। तो बोल रहे हैं कि मुझ जैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आप प्रकट होते हैं, आप भ्रमण करते हैं पृथ्वी पर। विदुर जी एक स्थान पर बोल रहे हैं शायद मैत्रेय मुनि को, हाँ मैत्रेय मुनि को विदुर जी कहते हैं कि आप जैसे भक्त जो हैं वो तो संसार का उद्धार ही करना चाहते हैं, केवल आप इस संसार में घूम रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए आपके पास अन्य कोई कार्य ही नहीं है। क्योंकि लोग संसार में दुख उठा रहे हैं तो आप लोगों को करुणा होती है। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। क्या कर रहे हैं आप जब देखते हैं जनस्य कृष्णस्य विमुखस्य दैवाद्, अपने दुर्भाग्य के कारण लोग कृष्ण से विमुख हो चुके हुए हैं, और जैसे ही कृष्ण से विमुख होते हैं कृष्ण की पीठ करते ही क्या है? अधर्मशीलस्य, अधर्म प्रवृत्त हो जाते हैं। या तो जीव कृष्ण की सेवा में लगेगा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, या तो कृष्ण की सेवा में मतलब धर्म में है, और अगर कृष्ण सेवा में नहीं है तो वो अधर्म में है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान का भक्त तो नहीं है पर बड़ा धार्मिक है, ये दो विरोधी बातें हैं। जैसे आप कभी ये बात नहीं कह सकते कि 55 साल की बुढ़िया बचपन में मर गई, बोल सकते हैं आप? दो विरोधी बातें हैं, या तो वो बचपन में मर गई या फिर वो 55 साल की हो चुकी है। 55 साल की स्त्री बचपन में नहीं मरी तभी 55 साल की है, तो ये विरोधी बातें हैं। उसी प्रकार से ये भगवान का भक्त नहीं है परंतु बड़ा धार्मिक है। तत्वतः धर्म तो केवल भगवत सेवा में लगना ही है, जीव का एकमात्र धर्म जो है वो भगवान की सेवा में लगना है, और अगर वो नहीं है तो वो तथाकथित धर्म का पालन करने के कारण अधार्मिक ही माना जाएगा। धर्म का मतलब है भगवत सेवा, और जैसे वो भगवान की सेवा से विमुख हुआ किसी ना किसी प्रकार से अधर्म में प्रवृत्त हो गया, अपने आप को संतुष्ट करने में लग गया। अब जो भी वो कार्य कर रहा है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, और इससे क्या होगा? अधर्म में लगने से उसके रिएक्शन होंगे। केवल भगवत सेवा को छोड़कर के हर कार्य करने का रिएक्शन है। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय लोकोयम कर्म बंधना। भगवान के लिए किए हुए कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और इस संसार के लिए कर्म करने पे व्यक्ति बंधन में। केवल भगवत भक्ति के लिए किए हुआ कार्य ही असली धर्म है। सावे पुंसा परो धर्मो, उसके अलावा सब कैटव धर्म, और कैटव धर्म का मतलब अधर्म। भगवत सेवा के अलावा हर वस्तु क्या है? अधर्म। हम कोई सोचें कि हम तो बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, मतलब हम तो यहां भक्त हैं, पर समाज में लोग कोई सोचे कि पूजा पाठ करते हैं हम तो रोज दीपक जलाते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर भगवान के भक्त नहीं है, तो आप धार्मिक हैं, क्योंकि कैटव धर्म नकली धर्म का पालन करते हैं। कैटव मतलब नकली, धोखे वाला धर्म, तो वो धर्म नहीं है, तो इसका मतलब वो अधर्म है, और उस अधर्म का इमीडिएटली रिएक्शन होगा। हर कर्म का प्रतिफल हमारे को प्राप्त होता है भगवान की भक्ति को छोड़ करके, तो इसीलिए अधर्म में प्रवृत्त, और अधर्म में प्रवृत्त होने से क्या होगा जीव में, सुदुखितस्य, दुख में प्राप्त होता है। इस संसार में जितने लोग दुखी हैं, दुख का एकमात्र कारण है कि भगवत सेवा से विमुख हैं। तो जब भगवान के भक्त इस बात को देखते हैं तो उनके हृदय में अपार करुणा भर जाती है। अपार करुणा के कारण क्या करते हैं, अनुग्रहाय चरन्ति नूनम, वो क्या करते हैं भगवान की सेवा के लिए और इन जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, उनको निजी रूप से क्या प्राप्त हो रहा था, बस दो चीज, जीवों पे करुणा और भगवान की सेवा। और जब ऐसा भ्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, भ्रमण करते हुए भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, इस संसार में हम लोग जो आ चुके हैं, माया का भूत जिनके ऊपर लग चुका है, इसलिए हमारे को भूत बोला जा रहा है, मतलब इस संसार के अंदर जितने जीव हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, उनको पकड़ पकड़ के कहां लेकर आते हैं, जनार्दन से, भगवान जनार्दन की शरण में। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव है, और इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त केवल भ्रमण करते हैं, किसी भी कॉस्ट पे खुद भी कष्ट उठाना पड़ता है, शारीरिक रूप से कई बार उनके ऊपर कई सारे कष्ट होते हैं, कई बार संसार में भी लोग उनकी निंदा करने लगते हैं, परंतु किसी भी परिस्थिति में वो भगवत सेवा से विमुख नहीं होते, और जो निंदा कर रहा है उसको भी उद्धार करने की ही सोचते हैं। हरिदास ठाकुर को मार रहे हैं कोड़े लोग, और वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु इनको बेचारों को पता नहीं, इनका उद्धार कर देना। जहां हम देखेंगे भक्त लोग अपनी निंदा सहन करके भी दूसरे का उद्धार करने की सोचते हैं। अगर हमारी कोई निंदा करे और हम कपित हो उठते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं भक्त बनने की, क्योंकि भक्त को तो अपनी निंदा सुनकर के प्रभाव ही नहीं होता, उसको लगता ठीक ही कह रहा होगा बेचारा। वो तुकाराम जी के बारे में हम सुनते हैं कि उनको लोगों ने जूतों की माला पहना दी और गधे पे बिठाया, घुमाया, और वो रात में सोच रहे हैं कि देखो मतलब ये कितने मतलब दयालु लोग हैं, मेरे को पूरे गांव, मैं तो ऐसे पैदल पैदल घूम भी ना पाता ठीक तरीके से, बढ़िया से इन्होंने पूरे गांव की सवारी भी करा दी और जूते खरीदने भी नहीं पड़ेंगे, जूते भी दे दिए। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव है, दोष बुद्धि है ही नहीं, अदोषदर्शी प्रभु, अदोषदर्शी, किसी में दोष दिखता ही नहीं है उनको। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में दोष होता भी था, जो भक्त है भगवान का विशेष रूप से, अगर उसमें कोई दोष होता भी था तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सोचते तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो दोष ना देख करके उसके गुण को देखते थे, भक्तों का यह स्वभाव है। तो इस प्रकार से पूरे पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हैं, महंत स्वभाव तारित पामर निज कार्य नाही हां लागी तार घर। जो साधुओं का एक ही स्वभाव है कि जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करो, उनका अपना कोई कार्य नहीं है यहां पे आने का, यहां पर अगर वो हैं तो पापियों का उद्धार करने के लिए, हम जैसे पापियों का उद्धार, और यह है भगवान की करुणा, यह है भगवान की करुणा कि वो हम सबको वापस चाहते हैं, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि तरह तरह से व्यवस्था करते हैं हमारे लिए कि हम किसी तरीके से उनके पास पहुंच जाएं, किसी तरीके से उनके पास पहुंच जाएं। क्या क्या प्रकट करते हैं, अपना धाम प्रकट करते हैं जहां पर आकर के हम शरण ले सकें, जहां पर आकर हम हरि कथा हरि कीर्तन साधुओं का संग कर सकें, धाम की अपनी महिमा है वहां पर निवास की, धाम प्रकट करते हैं, श्री विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, भागवत रूप में प्रकट होते हैं, ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं टाइम टू टाइम, और कई कई बार तो भगवान इतने उतावले होते हैं कि स्वयं आ जाते हैं उद्धार करने के लिए, और कई बार तो वो जो साधु होता है वो साधु वास्तव में साधु ना होकर के स्वयं भगवान होता है। कपिल देव साधु के रूप में आए पर वास्तव में कौन थे, भगवान। ऋषभ देव राजा के रूप में प्रकट हुए फिर साधु का जीवन जिए पर थे कौन, स्वयं भगवान। क्या मालूम किस रूप में हरि हमें मिल जाए। जब गोप कुमार की कथा सुनी हम सबने, गोप कुमार जब वैकुंठ में पहुंचे हैं तो वहां पर नारायण उनको क्या कह रहे हैं कि अरे गोप कुमार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इतने जन्मों से मैं इंतजार कर रहा था कब तुम मेरे पास आओगे। फाइनली मैं स्वयं जयंत के रूप में, मतलब तुम्हारा गुरु बन के तुम्हारे पास आया। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि गुरु की क्या महिमा है कि भगवान स्वयं गुरु बन के आ गए। ये तो उनको वैकुंठ में जाने के बाद पता लगा कि जो उन्होंने मेरे को दीक्षा दी थी वो भगवान ही थे, नहीं तो वो एक सन्यासी और एक गुरु समझ रहे थे उनको अपना। तो भगवान की अपार करुणा के कारण ये भक्त संसार में भ्रमण कर रहे हैं, बस अब एक ही चीज का वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनकी ओर दृष्टि करेंगे। अभी जनस्य कृष्णा द्विमुखस्य दैवात्, ज्यादातर मुख हमारा कृष्ण से विमुख है। अभी हमें जब पता लग भी जाता है कृष्ण यहां पर हैं तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं कृष्ण की तरफ, बाकी तो घर परिवार बीवी बच्चे पैसा धन नौकरी झाकरी बिजली का बिल पानी का बिल, वृंदावन में आए तो वृंदावन में रहने का स्थान, यही सब चीजों में हमारा ज्यादा समय बीतता है। सही बोल रहे हैं गलत? कृष्ण को अगर सेंटर में भी लेके आ गए तो फोकस में ये सब चीजें रखी हुई हैं। तो बस अब कृष्ण क्या इंतजार कर रहे हैं जब ये सब जगह से हम आंखें हटा के उन्हीं को देखेंगे कि आप ही हमारे सर्वस्व हैं, जैसा चाहें वैसा रख लें, अब हम आप ही की सेवा करेंगे, आप ही का नाम लेंगे, केवल उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन हमारी वो स्थिति आएगी तो वास्तव में उन्मत्त हो जाएंगे, जैसे यहां पर लिखा है ना उन्मत्त लिंगिनः, उन्मत्त, फिर इस संसार का कोई आकर्षण ना होते हुए सुख दुख से कभी प्रभावित नहीं होंगे, मानसिक रूप से भले ही शारीरिक रूप से किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, और उन्मत्त होकर के उसके मन में एक ही भावना होगी कि मैं कैसे दूसरों की भी सहायता करूं। अभी तक तो हम अपनी उद्धार की सोच रहे हैं और जैसे उन्मत्त हो उठेंगे तो हमारे मन में क्या भावना आएगी, मैं कैसे दूसरों की सहायता करूं। जैसे प्रभुपाद जी अपनी इतनी एडवांस एज में भारत से निकल के जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, मतलब क्या उन्मत्ता होगी वो भी कि बुढ़ापे में उठ करके यहां से चले कि नहीं जी हम लोगों का उद्धार करेंगे। तो उन्मत्त जब हम उठेंगे, क्योंकि उस समय हमारे को अपनी चिंता नहीं रहेगी, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, मेरा चित्त तो मग्न है, मेरे को अपनी चिंता ही नहीं है, अब चिंता तो मुझे किन की है, ये जो विमूढ़ लोग संसार में फंसे हुए हैं आपसे विमुख हैं इनकी मुझे चिंता है। तो जिस समय यह स्थिति आएगी तब वास्तव में हमारे को अपने आध्यात्मिक जीवन का असली लाभ होगा, क्योंकि तब हम अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे, केवल भगवान की प्रसन्नता और जो बाकी जीव हैं उनके उद्धार की चिंता होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? कोई टिप्पणी? कोई समीक्षा भागवतम में से? प्रश्न और टिप्पणी दो परिस्थितियों में नहीं होती है, एक होती है ऑल क्लियर और दूसरी भी होती है ऑल क्लियर। एक होती है कि ऑल क्लियर सब समझ आ गया, और दूसरी होती है ऑल क्लियर कुछ समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।